जय देवला पुस्तक छठी लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमियूणन्तजिणम् अनन्तनानेन दीर्घसौवट्टम् कम्मपदे सविहत्तिम् उच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीयुष्व आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठी पुस्तक में जो प्रदेश विभक्ति का अर्थाधिकार हम देख रहे हैं, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 29 पर आ गए हैं, 29। भुजगार विभक्ति का कथन हमारा शुरू हुआ था। पहले हमने 22 संयोग द्वारों में प्रदेश विभक्ति की मूल प्रकृति विभक्ति की बात की थी, अब उसी में भुजगार अल्पतर और अवस्थित की बात चली है। ये तीनों ही होते हैं इतना ही कह दिया, वो समुत्कीर्त न हुए, क्योंकि इसमें अवक्तव्य नहीं होता है। बाकी भुजगार भी है, अल्पतर भी है और अवस्थित भी है। उसके बाद स्वामित्व अनुयोग हम देख रहे थे कल, उसको भी हमने देखा था कि ये किसको होती है, तो मिथ्या दृष्टि को अथवा सम्यक दृष्टि को होती है, ऐसा कहा। और जो मार्गणाएं जिनमें केवल जिसको हम कहेंगे पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त मनुष्य पर्याप्त वगैरह, उसमें मिथ्या दृष्टि जीव के होती है। उसके बाद अभी कालानुगम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, पृष्ठ 29 पर 40 नंबर का जो बिंदु है पॉइंट, वहां से हम देखेंगे कालानुगम यानी भुजगार वाला तीसरा अनुगम, भुजगार का अनुगम 3। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मोने की भुजगार और अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। जब भुजगार का या अल्पतर का काल कहेंगे तो लगातार की बात है, सतत भुजगार 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 होता रहे तो की बात। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। हाँ, पल्ले का संख्या। अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, उतना का उतना होता रहे। प्रदेश विभक्ति की बात चल रही है, उतने के उतने ही प्रदेश ग्रहण हो तो। एक समय के लिए अवस्थित रहा, फिर भुजगार या अल्पतर हुआ, उतना का उतना। तो पहला जितना है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो एक समय वाला होगा, जो दूसरे समय में होता उसको अवस्थित कहेंगे। जितना हुआ है ऑलरेडी उतना रहा, तो एक समय के लिए उतना रहा। पहले समय तो कोई भुजगार या अल्पतर होके आया था, उसको तो हम भुजगार या अल्पतर कहेंगे। मान लेते 100 से 120 हो गए तो उसको भुजगार कहा, फिर उसके पश्चात वाले समय में 120 रहे तो अवस्थित, फिर मान लेते 140 हो गए तो अवस्थित एक समय के लिए रहा। तो जघन्य काल एक समय अवस्थित का और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इस प्रकार सब नारकी सब तिर्यंच, सब मनुष्य और सब देवों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मोनी की भुजगार और अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि वो उसकी स्थिति अंतर्मूर्त वाली है। इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा तो कैसे, वो तो इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त को में जानना चाहिए, इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। एक जीव की अपेक्षा ही लेना पड़ेगा इसको। नाना जीवों की अपेक्षा तो आगे है, भंग विचय होकर भागा भाग परिमाण क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर वगैरह वो आने वाले है पश्चात। ये तो एक जीव की अपेक्षा ही बात चल रही है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त, इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। अब इसी का विशेषार्थ, ओग से और आदेश से भी तीनों विभक्तियों का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि विवक्षित समय में किसी जीव ने भुजगार अल्पतर या अवस्थित विभक्ति की तो दूसरे समय में उससे भिन्न दूसरी विभक्ति उसके हो सकती है, उसकी है ना, एक जीव की बात चल रही है। तथा ओग से और आदेश से भुजगार और अल्पतर विभक्ति का उत्कृष्ट काल पल्ल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, यानी लगातार बढ़ती हुई की बात चल रही है। क्योंकि भुजगार और अल्पतर विभक्तियां अधिक से अधिक पल्ल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक पाई जाती हैं, आगे नहीं। अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल एक समय तो पूर्ववत ही है, तथा उत्कृष्ट काल, अवस्थित का उत्कृष्ट काल जो संख्यात समय कहा है, सो अवस्थित के काल को देखकर यह प्ररूपणा की है। यानी अवस्थित कब रहेंगे, हाँ जितना लेते हैं उतनी है व्यय है, या आय बढ़ेगी तो वे भी बढ़ना चाहिए, दोनों ओर से बता सकते हैं ना। तो सत्ता में उसकी स्थिति यानी संख्या उतनी की उतनी रहनी चाहिए, तो ये संख्या समय हो सकता है। हाँ हमें तो टोटल और कितना होते है उसकी सत्ता में कितना रहता है, अभी उसमें आय कितना है व्यय कितना है, उसको आय भी बढ़ेगी तो व्यय भी बढ़ेगी, फिर उतना का उतना रहेगा। नारकी आदि अन्य मार्गणाओं में भी यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए इनके कथन को ओह के समान कहा है। पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त तथा मनुष्य लब्धि अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मूर्त है, अतः इनके भुजगार और अल्पतर प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। अन्य मार्गणाओं में अपनी अपनी विशेषता जानकर यह काल घटित करना चाहिए। अब अंतरानुगम चलेगी यहाँ पर। अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ये भुजगार का अनुगम नंबर चार। हमने अभी तक समुत्कीर्तना, स्वामित्व, काल देखा, अभी अंतर देखेंगे। एक जीव की अपेक्षा अंतर, भुजगार का अंतर कब होगा, बीच में अवस्थित हो या अल्पतर हो तो निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मोनी की भुजगार और अल्पतर विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर पल्ल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। क्यों ऐसा कह सकते हैं, देखो अल्पतर का भी काल हमने पल्ले का असंख्यात होगा, तो पहले भुजगार हुआ, फिर लगातार अल्पतर होता रहे तो पल्ले के असंख्यात विभाग, फिर बाद में जाके भुजगार होगा तो उसका भी अंतर उतना ही होगा। अन्य का जो काल है वो पहले वाले का अंतर कहते हैं, तो दोनों में काल पल्ले का असंख्यात विभाग है इसलिए दोनों का अंतर भी उतना होगा। अवस्थित विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। क्यों? अवस्थित हुआ ही नहीं, अल्पतर और भुजगारी होते रहे पल्ले के असंख्यात विभाग में, असंख्यात लोक बहुत बड़ा काल है क्योंकि उतना का उतना रहना चाहिए ना। योग बढ़ सकता है तो आय बढ़ेगा, उतने फिर निकलने वाले उतने चाहिए। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए, आदेश से नारकियों में भुजगार और अल्पतर विभक्ति का अंतर ओह की तरह है क्योंकि वो बड़ी आयु है ना, तो पल्ले का असंख्यात भाग घटित होगा वहां पर भी। अवस्थित विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर, क्योंकि अंतर के लिए एक बार करना है फिर दोबारा होना चाहिए, तो बड़ी आयु लेकर उसका बीच वाला अंतर लिया। इसी प्रकार सब नारकी तीन प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच, तीन प्रकार के मनुष्य सब में अपनी अपनी स्थिति में कुछ कम कहेंगे। सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए। अपनी अपनी स्थिति बताइए ना, इतना विशेष है कि अवस्थित का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, जिसकी जो पृथत्व कोड़ी वर्ष जो है उतनी स्थिति ले लेना, पहला भव और अंतिम भव, पहले अवस्थित किया फिर बीच में लगातार मनुष्य भव किए फिर लास्ट में फिर उसने अवस्थित किया। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में मोहनीय की तीनों विभक्तियों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, क्योंकि उसकी स्थिति अंतर्मूर्त वाली है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकों में जानना चाहिए, इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए, इसी का विशेष है। तीन पल्ले में लेना कि नहीं लेना ऐसा आप पूछ रहे? हाँ, वो अवस्थित उसमें देखना पड़ेगा, लास्ट वाला उसमें हो सकता है उसमें भी। हाँ, देखो ऐसा उसमें कुछ कम होता है उसको नहीं लेना ऐसा कुछ लिखा नहीं है, विशेष अर्थ में देखेंगे अभी हम। अभी तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति जो है अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कह दिया उन्होंने, ऐसा भी नहीं करके भोग भूमि को नहीं लेना करते, तो पूर्व कोटि पृथत्व अधिक को भोग भूमि वाला भी ले सकते उसमें। देखो ये किसका अंतर चल रहा है, अवस्थित का अंतर, वही अवस्थित का अंतर चल रहा है ना, ये ओघ में अवस्थित का उत्कृष्ट अंतर कितना देखा, असंख्यात लोक, ओघ में अवस्थित का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक। अभी जिस मार्गणा की बात कर रहे हैं, तिर्यंचों में कितना लिया, तो यहाँ फिर पढ़ेंगे इसको। देखो जो हमने देखा ना असंख्यात लोग, तो सामान्य तिर्यंचों में तो घटित होगा, उसमें तो होता है असंख्यात लोग तो जरूर होगा। अब हमें अन्य मार्गणाओं में देखना है, नारकियों में कितना कहा 33 सागर में कुछ कम, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में कितना देखेंगे पंचेंद्र तिरंचों की जो पूर्व कोटि पृथक और तीन पल्ले ये ले सकते हम। हाँ, योग में बढ़ोतरी वगैरह होगी उसमें भी। वहाँ हमने स्थिति की बात देखी थी, स्थिति अनुभाग की बात अलग होती है। तीन प्रकार के मनुष्य सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में, सर्वार सिद्धि तक के देवों में ले लिया। तो उसका विशेष क्या बताया, अवस्थित का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मोहिनी की तीनों विभक्तियों का जघन्य अंतर एक समय है, वो तो हमने अभी पढ़ा था, अनारे पर्यंत ले जाना। विशेषण, ओघ से भुजगार और अल्पतर प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर काल एक समय है, क्योंकि एक समय तक विवक्षित विभक्ति रहकर दूसरे समय में अन्य विभक्ति के हो जाने से, अन्य ने या तो होगा अल्पतर की बात कर रहे हैं तो बीच में भुजगार हो जाए, अवस्थित हो जाए और वापस अल्पतर हो जाए, तो उसको अंतर कहलाएगा एक समय का। जघन्य अंतरकाल एक समय प्राप्त होता है, तथा उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। भुजगार और अल्पतर के लिए उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात में भाग है, क्योंकि भुजगार या अल्पतर विभक्ति का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। यानी जो अन्य का काल है वो पहले वाले का अंतर होगा, तो काल भी पल्ले का असंख्या तो भाग है एक एक का, तो दूसरे वाले का अंतर भी उतना होगा, इसलिए उक्त प्रमाण अंतरकाल प्राप्त हो जाता है। अवस्थित विभक्ति का जघन्य अंतरकाल एक समय पूर्ववत ही है, यानी एक समय के लिए भुजगार या अल्पतर हुआ तो एक समय उसका प्राप्त होगा, तथा उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। क्योंकि अभी इसका यहाँ कारण बताते हैं, क्षपित कर्मांश रूप परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। इसलिए वो इल लिए हुआ, इसलिए स करना लोक, इतने काल तक अवस्थित प्रदेश विभक्ति न हो यह संभव है। क्षपित कर्मांश रूप परिणाम का अर्थ ऐसा होता है, लगातार वो तो कम कम ही होते जाने, तो अवस्थित हुआ ही नहीं, और अलग लगातार और अलग अलग क्षपित कर्मांश रूप के परिणाम ऐसा लेना। क्षपित कर्मांश में जो प्रदेश की जो अलग अलग विभक्तियां हैं उसको भी ले सकते, अलग अलग विभक्तियां हैं ना उतनी इतनी, उसके वेरिएशंस कितने हैं। यहाँ हमें अवस्थित नहीं, उतना का उतना रहना चाहिए। भुजगार होगा परंतु अवस्थित नहीं होगा, बीच में तो भुजगार होते हैं, अवस्थित नहीं होगी उसकी बात चाहिए। परिणाम की बात है ना यहाँ, हाँ हाँ, अवस्थित नहीं रहेगा, कम भी होगा बीच में बढ़ेगा भी, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण की बात है ना, क्योंकि बिना बढ़े वो तो भुजगार तो उसके काल पल्ले का असंख्यात अभाव है, बाद में तो अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा, अंतर पड़ेगा जो कोई अल्पतर करेगा फिर भुजगार करेगा, यानी उन दोनों में रहेगा, अवस्थित बीच में नहीं होगा, इतनी बात लेनी।
लगातार वो अल्पतर नहीं कर सकता इतने काल,
नहीं लगातार अल्पतर हमने देखा ना उसका, अभी हमने काल पढ़ा पल्ले का असंख्या तो भाग ये, तो कभी भुजगार कभी अल्पतर ऐसा लेना है। उस परिणाम में नहीं रहना है, वो अलग अलग परिणामों की वेरिएशंस कितने हैं, क्षपित कर्मों, जैसे अभी हम शाम को देख रहे हैं ना, अदब प्रवृत्तकरण के परिणाम कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। वैसे नहीं, काल नहीं बताए। हाँ, ये काल किस में लिया, अंतरकाल के लिए अंतरकाल बताए, परंतु यहाँ अलग अलग उसके परिणाम होते जाएंगे, तो उसके कारण उसके भुजगार अल्पतर भी होते चले जाएंगे ना। उसके लगातार अल्पतर नहीं कह रहे, उसको लगातार अल्पतर नहीं है, लगातार अल्पतर तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक ही होता है, परंतु उसके अन्य अन्य परिणाम हुए, ऐसे परिणाम नहीं हुए कि उतना का उतना रहे। कभी योग, यहाँ तो योग भी लेना है और निर्जरा भी लेनी है, दोनों को लेना है। तो कम योग के साथ कम ग्रहण करा, कभी अधिक निर्जरा हुई, कब कम, कभी कम हुई, क्योंकि कंटिन्यूअस तो होता तो मोक्ष चला जाता। क्षपित कर्मांशिक जीव भी वो लगातार अल्पतर करता है, ऐसी कहाँ बात है, उसके वे काल अधिक बार आते हैं, ऐसा लिया था। जैसे उत्कृष्ट योग अधिक बार आता है, परंतु बीच बीच में फिर जघन्य योग में भी चला जाएगा ना। लगातार उत्कृष्ट योग में रहने का काल इतना नहीं है। हाँ, भुजगार अल्पतर इतना ही लेना है, उतने ही करेंगे, बीच में अवस्थित नहीं होगा, या तो भुजगार हो गए या तो अल्पतर हो गए, उसमें इतनी क्यों आपको शंका है। अकेले योग की बात नहीं है, यह सत्ता वाले कर्मों की बात है। योग से अधिक ग्रहण हो गए और फिर निकलते कितने हैं, जितनी निर्जरा हो रहे, उदय रूप हो रहे हैं, उसको भी गिनना है ना। अकेले आय की बात करके बात नहीं चलेगी, नया ग्रहण कितना होता है और जो ऑलरेडी सत्ता में उसमें से कितना निकल जाता है, वो हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए। देखो, सामान्य तिर्यंचों में यह अंतरकाल बन जाता है, इसलिए इसके कथन को ओघ के समान कहा है। नारकियों में अवस्थित विभक्ति के उत्कृष्ट अंतर को छोड़कर शेष सब अंतरकाल ओघ के समान है। शेष सब है वो पल्ल का असंख्यात आघात, और अवस्थित का कितना देखा, उसकी अपनी स्थिति से कुछ कम, यानी 33 सागर से कुछ कम, इसलिए यह सब अंतरकाल ओघ के समान कहा है। नरक की ओघ स्थिति 33 सागर है। नरक की ओघ स्थिति का अर्थ क्या है, ओघ क्यों लिखा? हाँ, सामान्य कथन है इसलिए ओघ कहा, नरक इन जनरल, उसमें फिर सातवें की कहे या पांचवें की कहे या पहले की कहे तो उसमें अंतर होगा। तो नरक की ओघ स्थिति यानी सामान्य नारकियों की बात चल रही है, यानी सामान्य से नरक में की बात है। 33 सागर है, इसलिए अवस्थित का उत्कृष्ट अंतर 33 सागर से कुछ कम प्राप्त होता है, क्योंकि नरक में उत्पन्न होने के प्रारंभ में और अंत में जिसने अवस्थित विभक्ति की और मध्य में अल्पतर या भुजगार करता रहा, बात है ना, उसके अवस्थित प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर बन जाता है। मूल में जो अन्य मार्गणाएं गिनाई है, यहाँ तो पंचेन्द्रियत्रिक भी कहे, मनुष्य भी कहे, देव भी कहे, उनमें भी अवस्थित विभक्ति के उत्कृष्ट अंतरकाल को छोड़कर पूर्वोक्त व्यवस्था बन जाती है। कौन सी पूर्वोक्त? पल्ले का असंख्यात भाग तो बन जाता है, तथा जिस मार्गणा का जितना उत्कृष्ट काल है, अभी वो मार्गणा का ही उत्कृष्ट काल लिया है, उसमें से कुछ कम कर देने पर उस मार्गणा में अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट अंतरकाल बन जाता है। यानी पंचेन्द्रियत्रिक में और मनुष्यों में और देवों में ऐसा होगा, अपना अपना उत्कृष्ट काल में कुछ कम कर दो। पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त व मनुष्य लब्धि अपर्याप्त की उत्कृष्ट काय स्थिति अंतर्मूर्त है। यानी लगातार उसी में जीव, एक ही जीव की बात चल रही है, लगातार उसमें भ्रमण करता रहे जन्म मरण तो भी अंतर्मूर्त है। इसलिए इनमें सब पदों का जघन्य अंतर काल एक समय, ये काय स्थिति का अर्थ समझ में आता है। दूसरा एक कौन सा शब्द होता है, एक भव स्थिति यानी एक भव, और काय स्थिति यानी लगातार उसी प्रकार के भव करता रहे तो उत्कृष्ट काल। तो उसके उत्कृष्ट काय स्थिति अंतर्मूर्त है, इसलिए इनमें सब पदों का जघन्य अंतरकाल एक समय तो सर्वत्र घटित होता है, और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है यानी अंतर्मूर्त के जो जितने भव है उसका एक काय स्थिति है, शुरू में एक बार अवस्थित हुआ और अंत में जाके फिर अवस्थित हुआ। इसी प्रकार अनाहारक मार्गनाथक अपनी अपनी स्थिति का विचार करके तीनों पदों का अंतरकाल जान लेना चाहिए। अपनी अपनी स्थिति, जो जिसकी अपनी स्थिति है, जैसे सम्यक को मार्गणा है जो कुछ है, तो वहां उसकी अपनी स्थिति समझना। ये तो अभी हमने अंतरानुगम एक जीव की अपेक्षा देखा। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय अनुगम से निर्देश दो प्रकार का है, ये भुजगार का अनुगम नंबर 5 है। ओग और आदेश, ओग से भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से है, ओग की अपेक्षा तीनों ही नियम से है। चूंकि अवस्थित वालों का अंतर भी हमने इतना देखा, फिर भी वो नियम से है, क्योंकि ओग में तो सभी जीव आते हैं ना, अनंत जीव आ जाते हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में मोनिय की भुजगार और अल्पतर विभक्ति वाले जीव नियम से है, कदाचित अनेक जीव भुजगार और अल्पतर विभक्ति वाले हैं और एक जीव अवस्थित विभक्ति वाला है, यानी भुजगार अवस्थित वाले, भुजगार और अल्पतर वाले तो ध्रुव भंग कहेंगे, और वेरिएशन कितने, अवस्थित वाला होगा भी या नहीं भी होगा, होगा तो एक भी हो सकता है अनेक भी हो सकते हैं, वही बताते हैं। तो अनेक जीव भुजगार और अल्पतर विभक्ति वाले है और एक जीव अवस्थित विभक्ति वाला है, कदाचित अनेक जीव भुजगार और अल्पतर विभक्ति वाले है और अनेक जीव अवस्थित विभक्ति वाले हैं, और पहले वाला जो अल्पतर और अवस्थित वाले होते हैं ध्रुव, अल्पतर और भुजगार, तो अवस्थित वाले तब नहीं होंगे, तो उसको ध्रुव भंग को मिलाने पर तीन भंग होंगे। कौन से तीन? भुजगार और अवस्थित वाले हमेशा ही होते हैं, वो ध्रुव भंग, उनके साथ एक अवस्थित वाला या दो अवस्थित, यानी अनेक अवस्थित वाले, दो या अधिक, ये तीन भंग हो गए। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, तीन प्रकार के मनुष्य, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए। अब किसको छोड़ेंगे? सांतर मार्गणा वालों को छोड़ेंगे। मनुष्य अपर्याप्तकों में मोहनी के तीनों पद भजनीय है, क्योंकि होगे तो वहां जीव ही होगे या नहीं भी होगे, और होगे तो या तो भुजगार वाले होगे, हो सकते हैं अल्पतर वाले ही है, हो सकते हैं तो अवस्थित वाला है, इसलिए वो तीनों ही भजनीय कहे। तो जहां तीन भजनीय है तो भंग कितने होंगे? 3 × 9 = 27 − 1 = 26 हो जाएगा। यदि ध्रुव भंग होता कहीं पर तो जितने भजनी होते उतनी बार हम तीन से गुणा करते आपस में, पर यहाँ ध्रुव भंग कोई है ही नहीं, इसलिए एक माइनस करना पड़ेगा। तो भंग 26 होते हैं। ये 26 कैसे निकाले समझ में आए ना? तीन पद भजनीय है तो 3 × 3 × 3 और फिर बाद में -1। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषार्थ, ओग से तीनों विभक्ति वाले नाना जीव सदा पाए जाते हैं, जहां अनंत जीव है वहां ये बात घटित होती है, सदा नहीं तो नारकी है, मनुष्य है, पंचेंद्रिय तिर्यंच है, देव है, उनमें सदा नहीं है, अवस्थित वाला सदा नहीं है। तो अवस्थित वाला है वो ऑप्शनल है, भजनीय है, इसलिए अन्य किसी भंग को स्थान ही नहीं है। सामान्य तिर्यंचों में भी तीनों विभक्ति वाले सदा पाए जाते हैं, इसलिए इनकी प्ररूपणा ओग के समान है। नारकियों में मोनी की भुजगार और अल्पतर विभक्ति वाले जीव नियम से होते हैं, और अवस्थित विभक्ति वाले विकल्प से होते हैं। विकल्प से उसको हमने कहा भजनीय होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अतः मोनी की भुजगार और अल्पतर विभक्ति वाले नियम से है यह एक ध्रुव भंग होता है जो कि सदा रहता है, उसी को ध्रुव भंग कहते हैं। इसके सिवा दो भंग होते हैं जो मूल में बतलाए हैं, यानी अवस्थित वाला एक या अवस्थित वाला अनेक। सब गतियों में ये ही तीन भंग होते हैं, केवल मनुष्य अपर्याप्त को में अपवाद है। चूंकि मनुष्य अपर्याप्त सांतर मार्गणा है, अतः उसमें तीनों विभक्तियां विकल्प से होती हैं, और इस तरह 26 भंग होते हैं, वे इस प्रकार। कदाचित भुजगार विभक्ति वाला एक जीव होता है, कदाचित अनेक जीव होते हैं। कदाचित अल्पतर विभक्ति वाला एक जीव होता है, कदाचित अनेक होते हैं। कदाचित अवस्थित विभक्ति वाला एक जीव होता है, कदाचित अनेक जीव होते हैं। कदाचित भुजगार वाला एक जीव और अल्पतर वाला एक जीव होता है। अब भुजगार के एक के साथ कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो भुजगार के एक के साथ अल्पतर जो है वो एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। वैसे अवस्थित वाला एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। नाना जीवन की अपेक्षा चल रही है ना बात, तो ये हमने सातवां पढ़ा कि भुजगार वाला एक और अल्पतर वाला एक। कदाचित भुजगार वाले अनेक और अल्पतर वाला एक जीव होता है, यानी अल्पतर को एक ही रख के भुजगार को एक अनेक बनाया। कदाचित भुजगार वाला एक जीव और अल्पतर वाले अनेक जीव होते हैं। कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव और अल्पतर वाले अनेक जीव होते हैं। समझ में आए 10? कदाचित भुजगार वाला एक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है। अब अल्पतर वाले को लिया ही नहीं, भुजगार और अवस्थित का कॉम्बिनेशन लिया। कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है। फिर कदाचित भुजगार वाला एक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं। कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं। ये और 4 हो गए उसमें। अब कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव, नहीं नहीं हो गया, 14 हो गए ना। कदाचित अल्पतर वाला एक जीव, अभी अल्पतर और अवस्थित का कॉम्बिनेशन हमारे पास 3 है ना, ए बी और सी। तो पहले हर एक को अलग अलग रखा, ए को अलग, बी को अलग, सी को अलग, हर एक के दो दो भंग। उसके बाद ए और बी के कॉम्बिनेशन वाले 4, फिर बी और सी वाले के 4, 4 4 8, और पहले 6 14 हो गए। अब ए और सी वाले करेंगे। कदाचित हाँ अल्पतर एक ए बी ए सी और बी सी, ए बी सी चल रहा है, पहले हमने ए बी और ए सी देखा, अब बी सी वाला देखेंगे। तो कदाचित अल्पतर वाला एक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है। कदाचित अल्पतर वाले अनेक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है, अवस्थित को एक कायम रखा था। कदाचित अल्पतर वाला एक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं, और कदाचित अल्पतर वाले अनेक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं। ये 4 कॉम्बिनेशन इतने, और यानी ए बी और सी के हर एक के दो दो, 6 हो गए। ए बी के कॉम्बिनेशन, ए सी के कॉम्बिनेशन और बी सी के कॉम्बिनेशन, हर एक के 4 4, चतरिक 12, और पहले 6 18 हो गए। अब तीनों के कॉम्बिनेशन एक साथ, अभी तीनों में हर एक को एक एक रखो, फिर एक एक को अनेक बनाते चले जाओ। कदाचित भुजगान वाला एक जीव, अल्पतर वाला एक जीव और अवस्थित अवस्थित हुआ अवस्थित वाला एक जीव होता है। ये 19 नंबर का, कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव, अभी भुजगार को ही एक के बाद अनेक बनाया और बाकी दो को तो फिक्स रखेंगे। अल्पतर वाला एक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है। कदाचित भुजगार वाला एक जीव, अल्पतर वाला एक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं। अब अल्पतर वाले को बदला, अनेक कर दिया। कदाचित भुजगार वाला एक जीव, अल्पतर वाले अनेक जीव, अभी अल्पतर वाले को भी बदला और अवस्थित वाला एक जीव होता है। कदाचित भुजगार वाला एक जीव, अल्पतर वाले अनेक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं, यानी बी और सी के अनेक अनेक कर दिए। कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव, अल्पतर वाला एक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं। बात ख्याल में आई? कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव, अल्पतर वाले अनेक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है। कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव, अल्पतर वाले अनेक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते, सबको अनेक रखा, ये 26 हो जाते। इस प्रकार 6 भंग एक संयोगी, उन्होंने भी बता दिया है। 12 भंग द्विसंयोगी और 8 भंग त्रिसंयोगी होते हैं। कुल मिलाकर 26 भंग होते हैं। सांतर और निरंतर मार्गणाओं की अपेक्षा गति मार्गणा में जो भंगों की प्रक्रिया बतलाई है, आगे की मार्गणाओं में भी उसी प्रकार यथायोग्य घटित कर लेना चाहिए। जहां अंतर होता है सांतर और निरंतर में, कॉम्बिनेशंस अलग अलग होती है। अब भागा भाग की बात चलेगी। अभी नाना जीवों की अपेक्षा हमने भंग विषय देखा था। अब ये भुजगार में 6 नंबर का, तो निर्देश 2 प्रकार का है, ओव और आदेश। अभी टोटल जीवों की अपेक्षा से इनके भुजगार कितने प्रमाण है उसको कहेंगे भागा भाग। ओग से मोहनी की भुजगार विभक्ति वाले जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है और अल्पतर विभक्ति वाले जीव संख्यात्वे भाग प्रमाण है। और अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। मैंने टोटल सभी अनंत जीवों की अपेक्षा बात कर रहे। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार्थ सिद्धि के देवों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि अवस्थित विभक्ति वाले जीव संख्यात विभाग प्रमाण, क्योंकि इनकी संख्या ही संख्यात है। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। ये समझ में आया भागा भाग विशेषण? भागा भाग अनुगम से यह बतलाया गया है विवक्षित राशि में अमुक अमुक विभक्ति वाले कितने भाग प्रमाण हैं, और परिमाणानुगम से उनका परिमाण अर्थात संख्या बतला दी गई। परिमाण में तो कहेंगे वो अनंत है या असंख्यात है, उसके बाद परिमाण में बताएंगे, प्रमाण में। यहाँ तो कितने भाग प्रमाण है उतनी बात है। जैसे ओग से मोहनी के प्रदेश विभक्ति वाले जीवों में संख्यात बहुभाग भुजगार विभक्ति वाले जीव होते हैं, संख्यात एक भाग प्रमाण अल्पतर विभक्ति वाले जीव होते हैं और असंख्यात विभाग प्रमाण अवस्थित विभक्ति वाले जीव होते हैं। फिर भी इन तीनों विभक्ति वालों की संख्या अनंत है। क्या कहते हैं? अवस्थित वाले हैं असंख्यात विभाग परंतु टोटल जीव जो अनंत है उसका असंख्यात भाग तो अनंत ही होगा। मनुष्य पर्याप्त मनुष्यनी और सर्वा सिद्धि वालों का प्रमाण चूंकि संख्यात है अतः उनमें अवस्थित विभक्ति वाले भी संख्यात वे भाग प्रमाण कहे हैं। शेष कथन स्पष्ट ही है। अब परिमाण अनुगम अभी बताया था उन्होंने थोड़ी में, ये अनुगम 7 नंबर का भुजकार में 7 नंबर का। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मोने की भुजकार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? द्रव्य प्रमाण का अर्थ है संख्या से कितने हैं? अनंत है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। अब उनके अलावा अन्य जो है मनुष्य है देव है तो नारकी है तो उनमें तो टोटल संख्या या असंख्यात होती है। शेष मार्गणाओं में सब पद वाले जीव असंख्यात है। इतना विशेष है कि मनुष्य पर्याप्त मनुष्यनी मनुष्यनी करना वो प दिख रहा है मनुष्यनी और सर्वा सिद्धि में तीनों विभक्ति वालों का परिमाण संख्यात है। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। अब भुजगार में क्षेत्रानुगम बताएं। अनुगम नंबर 8। तो क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोनि की भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है? सर्वलोक क्षेत्र है, क्योंकि एकेंद्रियों में भी भुजगार अल्पतर सब होता है ना, तो पूरा लोक। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। शेष मार्गणाओं में मुनि की तीनों विभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है, क्योंकि शेष मार्गणाओं उनकी संख्या जो है उनकी असंख्यात है, और उसमें भी कुछ भुजगार होंगे, कुछ अल्पतर वाले होंगे, कुछ अवस्थित वाले। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। बात ख्याल में आई, एक इंद्रियों को छोड़कर ये मार्गणाएं हैं तो उनका अपना क्षेत्र लोक का असंख्यात भाग भी है। स्पर्शन अनुगम, ये भुजगार में से 9वां अनुगम। वो निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मोहनी की भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वालों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? अभी क्षेत्र भी सर्वलोक है तो स्पर्शन भी होगा ही। हाँ, सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए, क्योंकि सामान्य तिर्यंचों में सभी आ जाते हैं, इकेंद्रिय आदि सब। आदेश से नारकियों में मुनि की तीनों विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का और त्रसनाली के कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। किसकी बात चल रही है? नारकियों में। 6/14 क्यों कहा? हाँ, 7वां नरक है, वो 6 राज्य नीचे है, इसलिए उसमें मारणांतिक और उपपाद भी ले सकते हैं। यहाँ कहते हैं, आदेश से नारकियों में मुनि की तीनों विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का और त्रसनाली के कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। पहले पृथ्वी में क्षेत्र की तरह स्पर्शन जानना चाहिए, यानी लोक का असंख्यात भाग। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकी सब पंचेन्द्रिय तिर्यंच सब मनुष्य सब देवों में मोनी की तीनों विभक्ति वालों का अपना अपना स्पर्शन जानकर कहना चाहिए। जानकर क्यों? नारकी कहाँ तक होगा उनका स्पर्शन? तो मारणांतिक की अपेक्षा हो सकता है, और मनुष्यों में तो मारणांतिक की अपेक्षा तो पूरा लोक हो सकता है। इस तरह से जानकर इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषार्थ, तीनों विभक्ति वालों का क्षेत्र और स्पर्शन, जैसे पहले मोहिनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट विभक्ति वालों का क्षेत्र और स्पर्शन घटित करके बतलाया है, वैसे ही जानना चाहिए। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का बता दिया, वैसे यहाँ पर स्पर्शन में भुजगार का और अल्पतर आदि का देखना। अब फिर कालानुगम जो आया है, यहाँ नाना जीवन की अपेक्षा देखना। ये नाना जीव और अभी उसमें अनुगम नंबर 10 नंबर आया क्या, स्पर्शन के बाद काल, ये नाना जीवन की अपेक्षा काल, भुजगार का अनुगम नंबर 10। तो निर्देश इसमें दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। अभी हमने एक जीव की अपेक्षा भुजगार का काल कितना देखा था, पल्लेकार अल्पतर का भी पल्लेकार संख्या और अवस्थित का उत्कृष्ट असंख्यात लोग, असंख्यात लोग। अब हम नाना जीवन की अपेक्षा देखेंगे, अभी देख लो काल, सॉरी असंख्यात लोग देखा है, सॉरी संख्यात समय काल में अंतर के साथ घोटाल हो गया मेरा, उसका अवस्थित का उत्कृष्ट काल कितना है हमने देखा था, तो संख्यात समय उससे ज्यादा अवस्थित नहीं रह सकता। हाँ, और उसका अंतर हमने असंख्यात लोग देखा था। अब यहाँ देख रहे हो, अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा, तो थोड़ा याद करेंगे तो ख्याल में, एक जीव की अपेक्षा संख्यात समय होता है, तो नाना जीवों की अपेक्षा इस तरह से घटित करना है। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनी की तीनों विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है, तो सर्वदा है ओघ से। क्योंकि हमने देखा था तीनों ही वाले होते हैं, तीनों ही होते हैं, अभी हमने देखा था ना, इसमें एक जीव की अपेक्षा हमने काल तो देखा था, परंतु जब सर्वदा होते हाँ भंग विषय जब देखे थे हमने, तो तीनों विभक्ति वाले नाना जीव सदा पाए जाते कहा था। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए, आदेश से नारकियों में मोहनी की भुजगार और अल्पतर विभक्ति वालों का काल ओघ की तरह है, काल बता रहे हैं, यानी कितना पल्ले का असंख्यात होगा, सॉरी मैं एक जीव की अपेक्षा अभी बात कर रही हूँ, सर्वदा है, आज बहुत घोटाले हो रहे हैं, ओघ की तरह नहीं सर्वदा, और अवस्थित विभक्ति वालों का जघन्य काल एक समय है, यानी नाना जीवों की अपेक्षा अंतर पड़ने वाला है, तो जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है, यानी एक ने किया अवस्थित, उसके बाद दूसरे ने किया, उसके बाद तीसरे ने किया, उसके बाद चौथे ने किया, तो आवली का असंख्यात होगा। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि अवस्थित विभक्ति वालों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्या समय है, क्यों, उनकी संख्या ही संख्या थी, इसलिए। इसी प्रकार सर्वा सिद्धि में जानना चाहिए, मनुष्य अपर्याप्तकों में भुजगार और अल्पतर विभक्ति वालों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, ये मार्गणा का उत्कृष्ट काल लिया उन्होंने। अवस्थित विभक्ति वालों का काल नारकियों की तरह जानना चाहिए। कितना है? हाँ, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट आवली का असंख्या तो अभाव, इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषण, मोहनी की भुजगार अल्पतर और अवस्थित प्रदेश विभक्ति को करने वाले नाना जीव सदा पाए जाते हैं, तीनों ही के, इसलिए इनका काल सदा का। सामान्य तिरंचों में भी यह व्यवस्था घट जाती है, इसलिए उनमें भी उक्त विभक्तियों का काल सदा का। नारकियों में यद्यपि भुजगार और अल्पतर का काल सदा है, पर अवस्थित के काल में फर्क है, तभी तो भंग बन गए थे ना वहां। बात यह है कि नाना जीव अवस्थित विभक्ति को एक समय तक करके द्वितीय आदि समयों में अन्य विभक्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं, और तब अवस्थित विभक्ति वाला एक भी जीव नहीं रहता, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय है। अब यदि नाना जीव निरंतर अवस्थित प्रदेश विभक्ति को करते रहे तो उपक्रम काल के अनुसार आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक ही कर सकते हैं। उपक्रमण काल है वो करना, अवस्थित को करना, लगातार करना एक के बाद एक, उसको कहेंगे उपक्रमण काल। इसलिए अवस्थित प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण बतलाया है। मूल में और जितनी मार्गणाएं बतलाई है उनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी संख्यात है, इसलिए इनमें अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। सर्वार्थ सिद्धि में मनुष्य पर्याप्तकों के समान काल घटित कर लेना चाहिए, यानी संख्यात समय, क्योंकि वहां भी संख्यात जीव है। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य सांतर मार्गणा है, इस मार्गणा का उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण है नाना जीवों की अपेक्षा, बाद में अंतर पड़ेगा ही, इसलिए इसमें भुजगार और अल्पतर का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है। पर अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त विधि से आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही प्राप्त होता है। वो तो जब है मार्गणा तब निरंतर तो नहीं रहेंगे अवस्थित वाले, आवली के असंख्यात विभाग ही हो जाएंगे। अब अंतर अनुगम, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर की बात चल रही है। ये भुजगार वाला अनुगम है ग्यारहवा, जहां जहां हमने सर्वदा कहा है वहां अंतर नहीं है कहेंगे। अभी हमने देखा था ना, ओग से तो तीनों ही सर्वदा होते हैं। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मोने की तीनों पद विभक्तियों का अंतर नहीं है, काल में उन्हीं को सर्वदा होते हैं कहा था। इसी प्रकार सामान्य तिरंचों में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में भुजगार और अल्पतर विभक्ति वालों का अंतर नहीं है, क्योंकि वे सर्वदा होते हैं। अवस्थित विभक्ति वालों का जघन्य अंतर एक समय, काल भी हमने जघन्य एक समय देखा था, और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। हमने पहले कहाँ देखा था? नाना जीवों की अपेक्षा, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले जो हमने अंतर देखा था, एक जीव की अपेक्षा देखा था, एक जीव की अपेक्षा भी असंख्यात लोग कहा था ना, 30 पृष्ठ पर। एक जीव की अपेक्षा जो हमने देखा था, अवस्थित का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक है, वही यहाँ पर लिया, यानी नाना जीव में कोई भी उत्कृष्ट करेगा ही नहीं, हाँ सॉरी अवस्थित करेगा ही नहीं, उसकी बात है। हाँ भुजगार या अल्पतर करेंगे, अवस्थित नहीं करेगा। वह हमने एक जीव की अपेक्षा बात की, तो ऐसा ही सब नारकी सब पंचेन्द्रिय तिर्यंच तीन प्रकार के मनुष्य और सब देवों में जाना चाहिए। ये मार्गणाएं तो निरंतर है, परंतु इनमें कोई भी अवस्थित करने वाला नहीं, ऐसा लेना है। मनुष्य पर्याप्तकों में भुजगार और अल्पतर विभक्ति वालों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ये तो उस मार्गणा का अंतर है। मार्गणा में कितना अंतर पड़ता है, तो पल्ले का असंख्या। अवस्थित विभक्ति वालों का अंतर नारकियों के समान है, असंख्यात्व। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषा ओग से तथा सामान्य तिर्यंचों में तीनों विभक्ति वाले जीव सदा पाए जाते हैं, इसलिए उनका अंतरकाल नहीं है। आदेश से भी सामान्य नारकियों में भुजगार और अल्पतर विभक्ति वाले जीव सदा पाए जाते हैं, इसलिए उनमें अंतरकाल नहीं है। हाँ अवस्थित विभक्ति वाले जीव कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक पाए जाते हैं। पाए जाए की बात है ना, अतः उनमें अंतर होता है। और अंतर का जघन्य प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण है, अर्थात हाँ फिर से पहले काल बताया और फिर अंतर पर जा रहे हैं। देखो तीसरी लाइन में अंत में हाँ अवस्थित विभक्ति वाले जीव नारकियों की बात चल रही है, भुजगार और अल्पतर वाले हमेशा ही पाए जाते हैं। अब अवस्थित वाला होगा भी या नहीं भी होगा, तो उसका अंतर है ना, पहले कोई जीव अवस्थित वाला करता है और बाद में एक भी जीव अवस्थित वाला नहीं होता, तो उसका उत्कृष्ट अंतर बताएं। वही बता रहे हैं कि अवस्थित विभक्ति वाले जीव कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक पाए जाते की बात है। लगातार कोई ना कोई अवस्थित करेगा, अवस्थित 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 अवस्थित, तो कितने काल तक, यहाँ काल बता रहे अंतर नहीं, तो काल कितना हमने देखा, आवली का असंख्यात भाग, अवस्थित का उत्कृष्ट काल, नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा तो हमने देखा था वो संख्या समय। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अधिक से अधिक आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक, काल की बात चल रही, पाए जाते हैं, अतः उनमें अंतर होता है, क्योंकि काल लिमिटेड बताया, सर्वदा बताया नहीं। यदि काल सर्वदा बताते तो अंतर नहीं है, परंतु काल अधिक से अधिक जो कोई है कितना है उससे मतलब नहीं, तो काल की लिमिट बताए उसका अर्थ है यहाँ तो अंतर होगा। और अंतर का जघन्य प्रमाण एक समय, वो अंतर कितना हो सकता है, हो सकता है एक समय के पश्चात ही और किसी ने अवस्थित कर दिया, तो एक समय। और उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण है, यानी इतने काल तक नारकियों में अवस्थित विभक्ति वाले जीव नहीं पाए जावे, यह संभव है, ये मैक्सिमम पॉसिबल अंतर बता दिया उन्होंने। इसके बाद कोई न कोई जीव अवस्थित विभक्ति वाला अवश्य होता है, उसी को तो अंतर बताया ना, उत्कृष्ट इसीलिए बता दिया। सब नारकी आदि अन्य गतियों में अंतर की यही व्यवस्था है। ये सब में अंतर ऐसा ही होगा, मात्र मनुष्य पर्याप्त इसके अपवाद है, सो जानकर उनमें अंतरकाल घटित कर लेना चाहिए। जानकर अंतरकाल इसलिए घटित करना है क्योंकि वो तो मार्गणा का अंतर बता रहे हैं। कहाँ पर?
मनु
मनुष्य पर्याप्त नाना जीवन की अपेक्षा उसका उत्कृष्ट काल कितना है। अवस्थित वालों की बात है, अवस्थित वालों का होगा, भले बीच में वो मार्गणा भी नहीं रहेगी, फिर जब रहेगी तो अल्पतर या भुजगार वाले रहेंगे। अब भावानुगम की अपेक्षा, ये भुजगार का अनुगम 12, सर्वत्र उदयिक भाव होता है और ये अल्पभूत लास्ट। अल्पभूत दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय की अवस्थित विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। हमने कितने भाग प्रमाण देखे थे? असंख्यात थे, टोटल अनंत है उसका असंख्यात भाग, प्रमाण उसका अनंत देखा है। अल्पतर विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे हैं, जिसको हम संख्यात्वा भाग कहा था, और भुजगार विभक्ति वाले जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। और तीनों कितने होते तो हमने देखा था तीनों ही अनंत है। इस प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए, यानी सबसे थोड़े, असंख्यात गुणे और संख्यात गुणे, उनका प्रमाण अलग अलग है। ओघ में तो अनंत कहेंगे और आदेश में असंख्यात कहेंगे, जहां जो है। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार्थ सिद्धि के देवों में मोहनी की अवस्थित विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं, अल्पतर विभक्ति वाले उनसे संख्यात गुणे हैं। पहले हमने कितने देखा था? असंख्यात। और भुजकार विभक्ति वाले जीव उनसे भी संख्यात गुणे हैं। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। ओग से विशेषा, ओग से और आदेश से अवस्थित विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं, ओग से भी और आदेश से भी। अल्पतर विभक्ति वाले उनसे अधिक होते हैं और भुजकार विभक्ति वाले उनसे भी अधिक होते हैं। कहाँ कितने अधिक होते हैं इसका प्रमाण मूल में बतलाया ही है, हमने देखा था उसका प्रमाण कितना है। तो ये भुजगार विभक्ति समाप्त हुई। मूल में हमने भुजगार को 23 नंबर दिया था, याद है? पेज नंबर 27 से शुरू हुआ था अल्पभूत के बाद। हाँ, ये 3 नंबर में हमने शुरू किया, 3 नंबर के पेज में भुजगार हो गया अपना। अभी पद निक्षेप, भुजगार को 23 नंबर दिया था, है ना? अब पद निक्षेप को हम 24 नंबर देंगे। तो पद निक्षेप का कथन करते हैं। उसमें ये 3 अनुयोग द्वार होते हैं, समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पभूत्व, ये 3 ही होते उसमें। उसमें समुत्कीर्तना के 2 भेद हैं, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट से प्रयोजन है। अभी उत्कृष्ट में भी निर्देश 2 प्रकार का, ओघ और आदेश। ओघ से मोनी की प्रदेश विभक्ति में उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान होते हैं, बस पाए जाते हैं। ये हो गई उसकी समुत्कीर्तना। उत्कृष्ट वृद्धि भी पाई जाती है, हानि भी पाई जाती है और उत्कृष्ट अवस्थान भी पाया जाता है। इसी प्रकार सर्वत्र गति मार्गणा में जानना चाहिए। इस प्रकार अनाहारक पर्यंत ले जाना चाहिए। इसी प्रकार जघन्य का भी कथन करके ले जाना चाहिए, यानी जघन्य में कैसा कहेंगे हम? जघन्य वृद्धि जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान होते हैं बस इतना ही। वो किसके होते हैं वो सभी स्वामित्व में देखेंगे। तो ये पद निक्षेप का स्वामित्व। पहले हमने पद निक्षेप का समुत्कीर्तना देखी थी। ये पद निक्षेप का स्वामित्व दो प्रकार का, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से अभी वहां तो उत्कृष्ट वृद्धि होती इतना ही बताया, किसके होती है यहाँ पर बताएं। तो ओघ से मोहनी की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? तो कहते हत समुत्पत्ति कर्म वाला जो एकेंद्रिय जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ और अंतर्मूर्त पर्यंत एकांत अनुवृद्धि योग से वृद्धि को प्राप्त होकर परिणाम योग स्थान को प्राप्त हुआ। उत्कृष्ट पूरा पढ़ेंगे हम। उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान में वर्तमान उस जीव के उत्कृष्ट वृद्धि होती है और उसी के अंतर समय में अनंत समय में उत्कृष्ट अवस्थान होती है। अभी हम इसको देखेंगे। उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ऐसा पूछा था। हत समुत्पत्ति किसको कहते हैं? हाँ, एकेंद्रियों में जाके जिसने स्थिति का घात किया है तो स्थिति, हाँ स्थिति कांडक घात हुए हैं तो स्थिति कांडक घात होता है तो क्या होता है? स्थिति कम हुई और जितने परमाणु है उतने स्थिति में डिस्ट्रीब्यूट हुए तो उसका जो निकलने वाला जो है वो बड़े बड़े हो निकल जाते हैं, बड़ी संख्या में वो निकल जाते हैं। कब तक होता है वो? जो हत समुत्पत्ति होता चला जाता है क्योंकि पंचेंद्रियों में से आया हुआ पल्ले के असंख्यात भाग तक वो हत समुत्पत्ति होता रहता है। तो उसने बहुत सारा कर्म उसका निकल गया ऐसा लिया ना। अब ऐसा जीव पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ तो वहां उसके योग्य वो ग्रहण करेगा तो उसके वृद्धि पहले सत्ता में कम थी अब ज्यादा हो गए। प्रदेशों की संख्या की बात है। इसीलिए कहते हत समुत्पत्तिक वाला जो जीव है एकेंद्रिय जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ है और अंतर्मूर्त पर्यंत यानी वो पर्याप्त में उत्पन्न होते ही उसको नहीं लिया जाता। तो पहले समय में कौन सा हो योग हुआ? हम का योग, वो योग नहीं पूछ रहे हैं। तीन उपपाद योग होता है। एकांत अनुवृद्धि कब तक होता है? हाँ शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक एकांत अनुवृद्धि यानी सबसे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए बाद में परिणाम, तो वो सतत बढ़ रहा है बाद में परिणाम योग स्थान को प्राप्त हुआ। और परिणाम योग स्थान का अर्थ क्या होता है? एकांत अनुवृद्धि ने सतत बढ़ता है परिणाम, बाद में परिणाम योग स्थान जो है अवस्थित भी रह सकते हैं, वृद्धि भी बहुत हो सकती है, हानि भी हो सकती है। तो जब परिणाम में है तो उसके बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। तो लिखा ना परिणाम योग स्थान में। देखो फिर मैं पढ़ती हूँ। स्वामित्व में सेकंड लाइन, किसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है? हत समुत्पत्ति कर्म वाला जो एकेंद्रिय जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ और अंतर्मूर्त पर्यंत एकांत अनुवृद्धि योग से वृद्धि को प्राप्त होकर, उस वृद्धि को उत्कृष्ट वृद्धि नहीं कही थी, अब परिणाम योग स्थान में आया है, परिणाम योग स्थान को प्राप्त हुआ। तो उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान में वर्तमान उस जीव के उत्कृष्ट वृद्धि होती है, उसी जीव के अनंत समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। ये बात ख्याल में आई? उत्कृष्ट वृद्धि के बाद वाला जो अवस्थान है उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में वर्तमान क्षपक के उत्कृष्ट हानि होती है। ये उपांत समय में जितना था उससे अंत समय में उत्कृष्ट हानि होकर उस वहां पर आ गया। अब आदेश से स्वामित्व की बात चलेगी। नारकियों में मोहनी की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति अकेली नहीं पूछी, उत्कृष्ट वृद्धि चाहिए। प्रदेश विभक्ति में वृद्धि लगाना, वृद्धि ने ऊपर क्या लिखे, आदेश नैरेश्य मोनियस्य उपकस्य वड्डिकस्य, डायरेक्ट उत्कृष्ट वृद्धि पूछा है उन्होंने। प्रदेश विभक्ति के जगह वृद्धि चाहिए। हाँ, तो नारकियों में किसकी वृद्धि होती है? उत्कृष्ट वृद्धि। उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसको होती है? तो हम सातवें नरक के अंतिम समय तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ मैक्सिमम बढ़ोतरी वृद्धि। जो असंगी पंचेंद्रिय जीव, ओघ में कैसा दिया था, हत समुत्पत्ति केकेंद्रिय जीव संगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ है, एकांत अनुवृद्धि के बाद परिणाम योग स्थान में पहुंचेगा। अब फॉर्मूला वैसा ही फिट कर दो यहाँ पर। जो असंगी पंचेंद्रिय जीव हत समुत्पत्ति कर्म के साथ, हत समुत्पत्ति क्यों कहा, वो असंगी के योग्य उसने कर्म कर दिए है मिनिमम, ऐसा जीव नारकी के नारकियों में उत्पन्न हुआ और अंतर्मूर्त पर्यंत एकांत अनुवृद्धि योग से वृद्धि को प्राप्त होकर परिणाम योग स्थान को प्राप्त हुआ।
परिणाम योग स्थान का पहला चरण क्या है? उसके पश्चात वाला वृद्धि वाला,
वहाँ परिणाम योग स्थान ही कहेंगे उसको हम अंतिम मरण के समय तक।
ये पहले समय
हाँ, तो क्योंकि परिणाम में भी वृद्धि के साथ परिणाम हो सकता है, हानि के साथ हो सकता है, अवस्थान के हो सकता है, तो वहाँ पर जो उसका उत्कृष्ट है, हाँ, अभी शुरू हुआ है ना उसका, तो वृद्धि के साथ वाला होगा, उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। यानी योग स्थान एकांत अनुवृद्धि योग के बाद जब परिणाम योग स्थान को प्राप्त करता है तो मैक्सिमम उसकी, हाँ, और उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? किसमें? प्रदेशों में उत्कृष्ट हानि किसके होती है?
अवस्थान की बात है,
हाँ, अवस्थान की बात है, हाँ, अकेले योग की नहीं, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की बात है। योग उतना का उतना रहा और मान लेते निर्जरा ज्यादा हुई तो वही, तो इसलिए हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए, पहली बात हुई है। उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट वृद्धि आगे क्या, हाँ, यहाँ तो हानि पूछ रहे हैं। अवस्थान के लिए तो हानि के पश्चात वाला अवस्थान ले लो या उत्कृष्ट वृद्धि के बाद वाला, उसी को उत्कृष्ट कहेंगे। और यहाँ जो देखो क्या कहते हैं, उत्कृष्ट,
हाँ,
अवस्थान उसी को कहते हैं जो परमाणुओं की संख्या उतनी की उतनी रही, बढ़ोतरी नहीं हुई। बढ़ोतरी होती तो हम उसको तो वृद्धि कहते, यहाँ हमको उतना ही रहना चाहिए। नया बंद करो फिर कितनी खिर जाए, हमें उतना का उतना प्रदेश समूह चाहिए। तो यहाँ कहते हैं उत्कृष्ट वृद्धि किसको, अभी हमने देखी थी नारकियों में उत्कृष्ट वृद्धि असंगी में से आया है, हत समुत्पत्तिक पने से आया है, पहले शरीर पर्याप्ति पूरी कर दी है।
अवस्थित
अंतर, काल नहीं अंतर जब हमने आदेश जो उत्कृष्ट जो काल असंख्यात लोक देखा था बरोबर है नाना जी उनकी अपेक्षा बता रहे कि एक जीव की अपेक्षा नहीं एक जीव की अपेक्षा आदेश में 33 सागर में कुछ कम और नाना जी उनकी अपेक्षा असंख्यात लोग अंतर एक जीव की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा एक भव ही लिया क्योंकि अंतर तो तभी घटित होगा एक जीव की अपेक्षा नाना जीव की अपेक्षा तो नार की हमेशा ही है परंतु एक जीव की अपेक्षा नरक का एक ही भव होता है तो अपनी अपनी नरक की उत्कृष्ट स्थिति में से कुछ कम किया था अंतर में अभी क्या प्रश्न है आपका नारकी में नहीं देखा ओग में देखा हाँ अवस्थान का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोग देखा हाँ एक नहीं अवस्थान कहाँ हुआ उत्कृष्ट अवस्थान कब होता है असंगी में से आया है पहले एकांत अनुवृद्धि हुई है परिणाम योग में आया है उत्कृष्ट वृद्धि के साथ परिणाम हुआ उसका तब उसने उत्कृष्ट वृद्धि की अवस्था ने पहले हाँ तो अनंतर समय में उतना का उतना रहा अवश्य विभक्ति हुई यहाँ काल की और अंतर की कहाँ बात आए स्वामित्व पूछ रहे हैं उत्कृष्ट अवस्थान किसके है जिसने उत्कृष्ट वृद्धि के बाद वाले समय में उतना ही रखा उसको उत्कृष्ट अवस्थान होता है वो कितने काल तक कर रहा है कितना अंतर है वो तो यहाँ का प्रकरण ही नहीं जब भी होगा तो किसके होगा ये बात आप कुछ घोटाला कर रहे हैं अवस्थान किसी को हुआ वो उत्कृष्ट हुआ कि नहीं हुआ ये अब हम कह रहे हैं पहले हम उत्कृष्ट अवस्थान होता क्या जगन्य होता था कि मीडियम होता था उसकी बात हमने डिफ्रेंशिएट किए बिना अवस्थित कब होता है उसकी बात की अब अवस्थित कितना इन्हें कितना होता है कितनी वृद्धि के बाद है तो उत्कृष्ट वृद्धि के बाद होता है उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहने में आता है ये जब कभी होगा तब की बात है ख्याल में आती है ना बातें उत्कृष्ट अवस्थान में या उत्कृष्ट वृद्धि में अंतर ये अपना अभी विषय नहीं चल रहा है स्वामित्व देख रहे हैं पहले आप पढ़ते देखो अभी हमने उत्कृष्ट वृद्धि किसको हमने देखा असंगी में से आया है एकांत अनुवृद्धि के बाद परिणाम योग स्थान को प्राप्त होता है और जब उत्कृष्ट योग स्थान में वो चला जाता है तब उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है उसके बाद वाला उत्कृष्ट अवस्थान है उत्कृष्ट हानि किसके होती है अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाले अन्यतर असंयत समय दृष्टि के अंतर्मूर्त काल बिताकर विषय योजना की गुण श्रेणी के शीर्ष भाग की उदीर्ण होने पर उत्कृष्ट हानि होती है क्या कहना चाहते हैं जब अनंतानुबंधी की विषय योजना करते हैं तो क्या होता है करण परिणाम मानता है कि तीन करण परिणाम होते हैं तो तीन करण परिणाम होते हैं तो उसके बाद उसके तो अनंतानुबंधी की विषय योजना पूरी होती है तो उसमें गुणश्रेणी रूप रचना करता है गुणश्रेणी का अर्थ क्या है ऊपर के जितने सत्ता के परमाणु है वो अधिक मात्रा में नीचे आते हैं असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा और उसके गुणित प्रमाण में श्रेणी रूप रचना होती है नीचे कम दूसरे समय में असंख्यात गुणा तीसरे समय असंख्यात गुणा चौथे अंतर्मूर्त प्रमाण गुण श्रेणी होती है तो नीचे नीचे के परमाणु फिरते चले जाते हैं और दूसरे समय में और ऊपर से परमाणु आते हैं वे भी फिरते हैं फिर और आते हैं वे ही असंख्यात गुणाक्रम से दिए जाते हैं। तो ये जो गुणश्रेणी शीर्ष का अर्थ क्या होता है, तो जो गुणश्रेणी के जो अंतिम निषेक है उसको गुणश्रेणी का शीर्ष कहते हैं। ये गुणश्रेणी यानी गुणित प्रमाण में श्रेणी रूप पंक्ति रूप ये माल यहाँ दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे समय में ऐसे, तीसरे समय में ऐसे, चौथे समय में ऐसे ही, जब अभी इतने ही बाकी रहे, ऊपर के अनंतानुबंधी के निषेक गल गए सब और अभी इतने ही बाकी रहे तो क्या होगा, यहाँ थोड़ा अपकर्षण तो होता चला जाएगा, उसको अभी गौण करके अब नीचे से एक एक निषेक खिरता चला जाएगा। ये बहुत मात्रा में चल रहे ना, तो ये खिरते खिरते अब यहाँ प्रश्न क्या है, हानि किसकी होती है, उत्कृष्ट हानि। तो गुणश्रेणी शीर्ष भाग की उदीर्णा, ये नीचे है उदयावली और ये ऊपर है सारे गुणश्रेणी, तो यहाँ ये नीचे से उदीर्णा होकर उदयावली में आते रहते और फिर खिरते रहते। तो यहाँ कहते ये गुणश्रेणी ये नीचे आते आते क्या हो गया, अभी इसके नीचे उदयावली रही और ये गुणश्रेणी का लास्ट टॉप मोस्ट मैक्सिमम परमाणु वाला उसको गुणश्रेणी का शीर्ष कहेंगे क्योंकि वो ऊपर की पंक्ति है। अब इसकी यहाँ पर उदीर्णा होगी, उदीर्णा होगी तो खिर जाएगा, निकल जाएगा ना, उदय रूप होकर खिर जाएगा, तब उसके उत्कृष्ट हानि होगी, मैक्सिमम हानि, सत्ता के परमाणु एक साथ बहुत सारे कम हो जाएंगे। हाँ, अन्यतर कोई भी असंयत समय दृष्टि के अंतर्मुहूर्त काल बिताकर विसंयोजना की गुणश्रेणी के शीर्ष भाग की उदीर्णा होने पर उत्कृष्ट हानि होती है। या दूसरा कौन सा लिया, जो कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि नरक में उत्पन्न हुआ उसके जब गुणश्रेणी का शीर्ष उदय में आता है तब उत्कृष्ट हानि होती है, क्योंकि वहां भी ऐसे ही लेना ना, पहले नीचे ही नीचे के सारे खिरते चले जाएंगे और अंतिम उसका गुणश्रेणी का शीर्ष उदय में आएगा तो वहां उसकी उत्कृष्ट हानि हो जाएगी। इसी प्रकार प्रथम नरक में जानना चाहिए, भवनवासी और व्यंतरों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि हानि की अपेक्षा जो कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि को हानि का स्वामी बतलाया है वह भवनवासी और व्यंतरों में नहीं होता, यानी कृतकृत्य वेदक वहां उत्पन्न नहीं होता। दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक मोहिनी की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है, पहले नरक में तो असंगी में से आया हुआ लिया, अब यहाँ कौन सा लेना, अपने योग्य प्रदेश सत्कर्म को आगे बढ़ाने वाले किसी भी समय दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि जीव के समय दृष्टि को भी लिया, उत्कृष्ट वृद्धि होती है, यानी अपने योग्य कम प्रदेश थे और यहाँ बढ़कर बांधे उसने तथा उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। उत्कृष्ट हानि का स्वामी पहले पृथ्वी के तरह जानना चाहिए। इतना विशेष है कि इनमें कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि की अपेक्षा हानि का स्वामित्व नहीं होता, परंतु वहां विसंयोजना तो होती है सर्वत्र। इसी प्रकार ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए। यही रुकते अभी हम, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। मयंक भाई।